द प्रिंट पॉड के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी आज आपको वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल का एक लेख पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, जिसमें वे लिखते हैं कि ग्रामीण सामंतवाद का बुरा दौर नोएडा में कैसे जीत गए शहरी इलीट। गुड़गांव में जहां आखिरी मॉल खत्म होता है ना, उधर ही तुम्हारी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाती है। 2015 में आई अनुष्का शर्मा की फिल्म NH-10 में हरियाणा का एक पुलिस वाला बेहद संक्षेप में समझा देता है कि भारत में सामंतवाद के गढ़ यानी ग्रामीण इलाकों में लोकतंत्र किस तरह काम करता है। वो ये भी समझाता है कि हम सड़क पर बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं क्योंकि अंबेडकर का संविधान है, पर गांव में तो मनुस्मृति का ही राज चलता है। ये डायलॉग बहुत चुटीला है, पर यह पूरा सच नहीं है। दिल्ली के उपनगर नोएडा के इलीट अपार्टमेंट ग्रैंड ओमेक्स में रहने वाले एक दबंग युवा नेता और वहाँ की एक महिला के बीच हुई कहा सुनी और उसके बाद का घटनाक्रम बताता है कि भारत वैसा नहीं है जैसा कि वह पुलिस वाला बता रहा है। भारत सही दिशा में बदल रहा है और आखिरी शॉपिंग मॉल के बाद भी लोकतंत्र और संविधान काम करता है। बल्कि इस खास केस में तो जिस अपार्टमेंट में यह घटना हुई है उसके बाद आगे चलें तो आधा दर्जन से ज़्यादा मॉल मिल जाएंगे। अगर मॉल ही लोकतंत्र और संविधान के प्रभावी होने का पैमाना है तो देश में मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बाढ़ आई हुई है, यानी लोकतंत्र अब विस्तार पा रहा है और दबंग उज्जड़ सामंतवाद अब सिकुड़ रहा है। शहरी अमीर अब समाज क्रम में अपनी वाजिब यानी सबसे ऊपर की जगह पर दावा कर रहे हैं। पीढ़ियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शिखर पर कब्जा जमाए हुए सामंत अब इसकी तपिश महसूस कर रहे हैं। ये पैसे की ताकत है जो जन्म के कारण हासिल किए हुए विशेषाधिकारों पर भारी पड़ रही है। पैसा कम से कम सिद्धांत रूप में कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन जन्म आधारित विशेषाधिकार जैसे जाति, सामंती परिवार आदि हर किसी को हासिल नहीं है। बीजेपी के सांसद रहे दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव ने किसी और संदर्भ में एक सटीक बात कही थी, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। नोएडा की घटना के बारे में यहाँ विस्तार से उल्लेख करना संभव नहीं है। मीडिया में इसकी खूब सारी रिपोर्टिंग हो चुकी है। इस विवाद की शुरुआत एक वीडियो क्लिप के वायरल होने से हुई, जिसमें श्रीकांत त्यागी, जिसे उनकी पत्नी बीजेपी का नेता बताती हैं, अपार्टमेंट की एक महिला को गालियां और धमकियां दे रहा है। इसके बाद के घटनाक्रम में मीडिया मामले को उठा लेता है, फिर त्यागी की पत्नी को पुलिस ले जाती है और आखिरकार त्यागी को पुलिस मेरठ में गिरफ्तार कर लेती है। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। नोएडा का घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण दबंगों का इलाका यानी बदनाम NH-10 का दायरा सिमट रहा है। इस घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू पुलिस और प्रशासन का रुख है, जिस पर आगे चर्चा की जाएगी। इस बात को ना भूलें कि यूपी में बीजेपी की सरकार है और पुलिस तथा प्रशासन ने जो किया है वह राजनीतिक सत्ता की सहमति के बिना नहीं हुआ है, खासकर इसलिए कि इस घटना की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही थी। ये विवाद शहरी रईसों और ग्रामीण गरीबों के बीच नहीं था। दोनों पक्षों की तुलनात्मक आर्थिक हैसियत का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, पर जितनी रिपोर्टिंग हुई है उससे स्पष्ट है कि त्यागी का परिवार भी आर्थिक रूप से सक्षम और समर्थ है। वैसे भी ग्रामीण सामंतवाद के प्रतिनिधि आमतौर पर जमीनों के मालिक होते हैं और जाति व्यवस्था में भी वे ऊँची हैसियत रखते हैं। उनकी दबंगई का स्रोत अक्सर उनकी जमीन और जाति ही होती है। उनकी भाषा का अक्खड़पन और उज्जड़पन का स्रोत भी सत्ता संरचना ही है, क्योंकि नीचे के पायदान पर खड़ा आदमी ऊपर के आदमी से अक्सर अदब से बात करता है और गाली गलौज तो वह अपने जोखिम पर ही कर सकता है, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हाल के वर्षों में शहर काफ़ी तेजी से फैले हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरों की सीमाएँ आसपास के गाँव में घुस गई हैं। इस वजह से गाँव की ज़मीनों की कीमत बढ़ी है और जिनके पास ज़मीनें हैं उनमें एक नई अमीरी आई है। भारतीय समाज व्यवस्था में ज़मीन के मालिक कौन जातियां हैं ये जाहिर है, लेकिन पैसा तत्काल किसी को अभिजाति यानी एलीट नहीं बना सकता। अभिजातीकरण या एलीट बनना एक प्रक्रिया है जिसमें पीढ़ियां लग सकती हैं और हर व्यक्ति या परिवार समान स्थितियों में समान रूप से एलीट नहीं बन पाता। शहरी जीवन में तनाव और तनातनी की एक वजह यह भी है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले नए बने अमीर और शहरों के अपेक्षाकृत पुराने रईस नए बने अपार्टमेंट में स्थान शेयर करने लगे हैं और उनके बीच संसर्ग और संवाद होने लगा है। पहले अपने अपने स्पेस में होने के कारण जो कंफर्ट या स्वाभाविकता थी वह अब खंडित हो रही है। ग्रामीण या सामंती लॉट से शहरी और इलीट बनना एक ऐसी प्रक्रिया है जो भारत में आसान नहीं है, ना ही यह सीधी प्रक्रिया है। भारत में ग्रामीण सामान से शहरी अभिजात्य बनने की प्रक्रिया अक्सर बीच में फंसी रहती है और लंबे समय तक कोई व्यक्ति या समाज संक्रमण में रह सकता है। पश्चिमी यूरोपीय देशों में शहरी लोगों के लिए इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं होता है कि वे किस गांव से आए हैं, लेकिन भारत में तो ज़्यादातर संवाद ही दो बातों से शुरू होते हैं कि आप पीछे कहां से आए हैं और आपकी जाति क्या है। इन दो प्राथमिक और महत्वपूर्ण पहचानों के जाहिर होने पर ही अक्सर संवाद सहज हो पाता है। एक समस्या यह भी है कि भारत में आधुनिकता या मॉडर्निटी का शास्त्रीय यानी क्लासिक रूप लागू नहीं होता। यहाँ मॉडर्न होने का मतलब परंपरा और अतीत से संबंध विच्छेद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लोग यहाँ शहरी जीवन जीते हुए भी लंबे समय तक अपनी परंपराओं और ग्रामीण अतीत से जुड़े रहते हैं। इसे जमीन से जुड़ा होना कहा जाता है और इसके लिए लोग किसी की प्रशंसा भी कर सकते हैं। नोएडा शहर के संदर्भ में इस पूरे विवाद को देखते हुए ध्यान रखा जाए कि नोएडा की स्थापना 1976 में एक औद्योगिक उपनगर के तौर पर हुई थी और सोच यह थी कि दिल्ली शहर में अब नए उद्योग लग नहीं सकते तो नोएडा में उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराई जाए। कालांतर में नोएडा औद्योगिक से ज़्यादा रिहायशी कॉलोनियों और अपार्टमेंट का शहर बन गया। इस क्रम में नोएडा के अंदर पुराने बसे गाँव का कुछ हद तक शहरीकरण हुआ और वे अर्ध शहरी इलाके बन गए। इन गाँव के अमीर लोगों ने बड़ी संख्या में अपार्टमेंट और कॉलोनियों में भी फ्लैट और कोठियाँ ली। वे कॉलोनियों में जाकर बसे पर गाँव से उनका संपर्क कायम रहा। अपार्टमेंट और कॉलोनियों में परंपरागत शहरी लोगों के साथ उनका संबंध कभी सौहार्दपूर्ण तो कभी टकराव वाला रहता है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनावों में इनके बीच का तनाव अक्सर उभर कर सामने आता है, खासकर इलीट और ज़्यादा अमीर लोगों के अपार्टमेंट में ग्रामीण इलाकों के इलीट कम हो सकते हैं और वे खुद को अलगाव में महसूस कर सकते हैं। इसलिए नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में त्यागी और दूसरे निवासी के बीच जो टकराव हुआ उसने मुझे चौंकाया नहीं, बल्कि जिस बात पर मैं चकित हूँ वह है पुलिस और प्रशासन का व्यवहार और उससे भी ज़्यादा बीजेपी और उसके नेताओं का रुख। ये बात ध्यान रखने की है कि इस मामले में अपराध हत्या या हत्या की नीयत से चोट पहुंचाने जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें शांति भंग करने, धमकी देने और औरत की अस्मिता और छवि को धूमिल करने जैसी धाराएं ही लगनी चाहिए, लेकिन घटना के बाद जिस तरह से पुलिस ने त्यागी को पकड़ने के लिए अभियान चलाया, उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया और जिस तरह से कमिश्नर ने खुद उसकी गिरफ्तारी की खबर देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वह दिखाता है कि प्रशासन इस मामले में ये दिखाना भी चाहता था कि ग्रामीण दबंगई को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर तब जबकि उसका टकराव शहरी इलीट से हो। साथ ही बीजेपी के स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने इस मामले को तत्परता से उठाया और लाइव टीवी पर कमिश्नर से कहा कि हमें शर्म है कि यूपी में हमारी सरकार के होते हुए यह सब हो रहा है। यह संभव है कि श्रीकांत त्यागी सचमुच बीजेपी से जुड़ा हो, क्योंकि इसके काफ़ी प्रमाण मीडिया में दिखाए गए हैं। अगर ये सच ना भी हो तो ग्रामीण सामंत इस दौर में बीजेपी के साथ खासी संख्या में जुड़े हैं। बीजेपी ने दिखा दिया है कि अगर शहरी इलीट और ग्रामीण सामंत के बीच चुनने की बारी आएगी तो वह किस पाले में खड़ी होगी। मेरा मानना है कि इस मामले को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर भी देखना चाहिए। बीजेपी इस बात को लेकर गंभीर है कि यूपी में निवेश आए और उद्योग लगे तथा सर्विस सेक्टर में नौकरियां आए। इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना ज़रूरी है, इसलिए सरकार ग्रामीण सामंतों के उजड़पन को बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। नोएडा की घटना के बाद त्यागी समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन यह समझने की ज़रूरत है कि पतनशील सामंतवाद के लिए उभरते पूंजीवाद से टकरा पाना आसान नहीं है। ये ज़रूरी भी नहीं है। सामंतों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वे, और अगर ये संभव नहीं हुआ तो उनकी अगली पीढ़ी शहरी आधुनिकता के रंग में खुद को ढाले। यही प्रगति का रास्ता है। गाली गलौच और अनावश्यक ठसक से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। द प्रिंट पॉट के इस अंक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।